أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على آل الله واللعن على أعداء الله. محترم ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقہ اور زندگی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم روزے کے احکام بیان کریں گے، خصوصاً مبتلا تھے روزہ کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس میں ان نکات کی طرف ہم توجہ دلائیں گے جو عام طور سے جس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اور اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسئلہ اور ہر حکم آسان ہے، اگر عمل نہیں کرنا چاہیں تو ہر حکم سخت ہو جاتا ہے. تو روزہ جو یقیناً ہماری خیر و صلاح کے لیے ہے، اخروی اور ہماری دنیاوی دونوں، لیکن ہمیں جو توجہ دینا ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، سراپا تسلیم ہے، لہٰذا جو اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے ہمیں سراپا تسلیم رہنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جنہیں مبتلات روزہ کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک اہم چیز، پہلی چیز ہے کھانا اور پینا. کھانا اور پینا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان اگر آمدن کوئی چیز کھاتا اور پیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ دانت میں پھنسے ہوئے ذرات ہوں جو انسان سحری کے وقت کھاتا ہے، اگر وہ اس کے منہ میں آتے ہیں اور وہ آمدن نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر انسان بھولے سے پانی پی لے یا بھولے سے کھانا کھا لے تو کہا گیا کہ پیٹ بھر کے بھی اگر کھانا ہے، شروع کے دنوں ممکن ایسا پیش آئے کہ جو ہے وہ یاد نہ ہو، وہ روزے سے مثلا پانی پی لے یا کچھ کھا لے، تو بھولے سے کھا پی لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے کھانے پینے کے سلسلے میں جن نکات پر توجہ ضروری ہے، مثلا لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں ہمیں افطار بنانا ہے، کھانا بنانا ہے بچوں کے لیے مثال کے طور پر، یا افطار کے لیے چیزیں بنانی ہے، تو ہم نمک کیسے چکھیں، نمک چکھنے کا مسئلہ، تو اس کو بھی میں حل کیے دیتا ہوں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ آپ نمک چکھ سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کا مزہ حلق تک نہ جائے، زبان پہ رکھ کے انسان اس کو وہاں سے ہٹا دے. اسی طرح سے ہم بچے کے لیے جو ہے ہماری خواتین جو کوئی سخت چیز کو چبا کے ان کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہیں، چھوٹا بچہ ننھا بچہ ہے، یا کسی جانور کو کچھ دینا چاہتی ہیں چبا کے ڈالنا چاہتی ہیں، تو چبا سکتی ہیں، چبایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ اس کا مزہ جو ہے وہ کہا گئے حلق تک نہ پہنچے انسان کے. اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ آیا نا روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں، سوئی انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں، تو کہا کہ اس میں اگر غذائیت نہیں پائی جاتی ہے، اگر وہ طاقت کا انجیکشن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دوا کے لیے ہے تو انجیکشن لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اسپرے یوز کرتا ہے، اسپرے اس کے سانس کی پرابلم ہے یا کوئی پرابلم ہے، اسے اسپرے یوز کرنا پڑتا ہے دوا کے طور پہ، تو اسپرے بھی وہ یوز کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کھانے پینے کا مسئلہ، دوسرے یہ کہ غلیظ غبار انسان اگر داخل کرتا ہے اپنے اندر تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اس میں غلیظ غبار، اب وہ چاہے وہ مثال کے طور پر حرام ہو جسے مٹی ہے، یا حلال ہو جیسے مثال کے طور پر آٹا ہے، اگر یہ جاتا ہے انسان کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے، آمدن اگر اختیاراً اختیار کی حالت میں انسان اس کو داخل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. غلیظ غبار ہو، ہلکا پھلکا نہیں، ہم جا رہے تھے کہیں دھول اڑی ہمارے منہ میں آگے، حلق میں جا آگے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ غلیظ ہونا چاہیے، دوسرے کہ اپنے اختیار سے انسان جو ہے وہ اس کو اپنے حلق میں داخل کرے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. آپ کی خدمت میں مبتلات روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے تھے، جس میں کھانے پینے کے بارے میں بیان کیا گیا، غلیظ غبار انسان اگر حلق میں اپنی داخل کرتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اسی طرح پورا سر پانی میں ڈبونا، یعنی انسان عمدن پورا سر پانی میں ڈبوتا ہے تو اس کا روزہ باطل، لہٰذا اگر انسان پانی کے اندر ہے اس کا بدن تو چلا گیا لیکن سر نہیں گیا، یا سر گیا ہے مگر حصوں میں کر کے، پہلے آدھا حصہ گیا پھر اس کے بعد آدھا حصہ ڈالتا ہے، یعنی ایک دم سے پورا حصہ نہیں ڈالتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں. یا کوئی ڈھکیل دیتا ہے اس کو پانی میں، اس نے اختیار سے نہیں، یا کوئی پکڑ کے زبردستی اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہے، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہے. اسی صورت میں زبردستی ایسا ہونا چاہیے. इसी तरह से कह करना, अगर इंसान रोज़े में कह करता है। यहाँ पे एक नुक्ते की तरफ आपको तवज्जो दिलाऊं ये कि कह होने से रोज़ा बातिल नहीं होता, कह करने से रोज़ा बातिल होता है। यानी क्या मतलब, यानी अगर खुद से कह हो जा रहे, हमारे अख्तियार में खुद से हो गई कह, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं। क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि लोग तो सोचते हैं कि कह हो गई तो अब रोज़ा बातिल हो गया। नहीं, जानबूझ को ऐसे इंसान ऐसा काम करे जैसे रोज़ा बातिल हो जाए। मिसाल तौर पर रात में सहर के वक्त, सुबह के वक्त कोई ऐसी चीज़ खाए से पता हो कि सुबह में से कह हो जाएगी, दिन में कह हो जाएगी, अब वो कह हो या ना हो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। तो इस पर तवज्जो की ज़रूरत है, कह होने से रोज़ा बातिल नहीं होता है, कह करने से रोज़ा बातिल होता है। इसी तरह से इस्तिमना है, इस रोज़ा बात, यानी इंसान ऐसा अमल करे कि जिससे उसकी मनी खारिज हो जाए, तो उससे भी रोज़ा बातिल होता है। लेकिन अगर इंसान सो जाता है, अगर इंसान सो जाता है, सोने में उसे एहतलाम हो जाता है और ख़ुद ब खुद ये हो जाता है, तो उससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। इंसान ख़ुद ऐसा अमल करे कि जिससे हो जाए, तो फिर रोज़ा बातिल होता है। इसी तरह से इंसान मुजनिब हुआ रात में, मुहतलिम हुआ रात में, और वो अजान सुबह तक उसी में बाकी रहता है, अजान सुबह तक उसी हालत में बाकी रहता है, तो कहा गया है उसका रोज़ा बातिल है और उसे उस रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान मुहतलिम हुआ और वो गुस्ल और तैमुम करना उसे याद नहीं, चंद रोज़ गुजर गए और उसे ना गुस्ल याद रहा और ना वजू मुमकिन है। बाज़ किसी जवान के साथ जो है वो ये मसला पेश आए, ना उसने गुस्ल किया, और अगर तैमुम उसका वजीफ़ा था, फरीज़ा था, ना तैमुम किया, तब उसकी उसको क्या करना पड़ेगा। तो कहा गया अगर माह रमज़ान के रोज़ों में ऐसा हुआ, उसके कज़ा में ऐसा हुआ है, तो कहा गया है कि उसे उन रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी जो रोज़े उसने इस हालत में रखे हैं कि गुस्ल नहीं किए हुए था, और बाद में वो कोई ऐसे अलामत देखता है जिसे मालूम होता है कि मैं तो मुहतलिम था, मैं तो मुजनिब हो गया था, मुझे तो गुस्ल करना चाहिए था। तो माह रमज़ान के रोज़े उसके कज़ा में ऐसा होता है, तो चंद रोज़ जो उसने इस हालत में रोज़े रखे हैं उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर माह रमज़ान के रोज़े के अलावा है, कज़ा माह रमज़ान के अलावा है, तो उस सूरत में कहा गया उसका रोज़ा सही है और कोई मसाला नहीं है। तो ये जो बयान किए जा रहे हैं आपकी खिदमत में मुब्तलात, इसी तरह से अगर रोज़ेदार जो है वो दिन में मुजनिब हो जाता है, मुतलिम हो जाता है, तो उस पर वाजिब नहीं कि फ़ौरन जाके गुस्ल करे, वो गुस्ल कर सकता है बाद में भी, और उसका रोज़ा सही नहीं है, यानी दिन में अगर वो हो जाता है। अगर मुजनिब को ये पता हो कि वो जो है वो सुबह बेदार नहीं होगा, सुबह बेदार नहीं होगा, तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करके सोए, और जो भी और अगर फिर भी सो जाता है, फिर भी अगर वो सो जाता है बगैर गुस्ल किए हुए, वो सोता रह जाता है अजान सुबह तक, तो उस पर कज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी वाजिब है दोनों। लिहाजा ही होशियार रहना चाहिए कि अगर किसी को ज़रूरत पेश आती है रात में, माह रमज़ान की रात में गुस्ल की, तो उसे गुस्ल करके सोना चाहिए। इसी तरह से एक मुबतिल जो रोज़े को जो चीज़ बातिल कर देती है, वो हमबिस्तरी और जमा है, ये भी रोज़े को बातिल कर देती है, लेकिन कब, जब ये आमदन अंजाम पाए। लेकिन अगर जो है वो सहवन या अंजाम पा जाए, भूल गया हमें रोज़े से हूँ और वो अंजाम दे दिया उसने, या जबर किया गया उस पर, मजबूर किया गया उसको इस काम करने में, इकराह किए गए उसको, या सोने के आलम में उसने जो है वो ऐसा कर बैठा वो मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए कहा गया है कि वो उसका रोज़ा बातिल नहीं है और उसका रोज़ा सही है। यानी अगर आमदन करता है तब तो ये कुछ वो थे कि जो, या इंसान रोज़े की हालत में जो है वो एमाला करेगा, यानी कोई सयाल चीज़ उसके पेट में डाली जाए, तो कहा गया कि उससे भी उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थीं कि जिन्हें मुब्तलाते रोज़ा कहा जाता है, कि अगर इंसान इनको अंजाम दे तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ करना है, परहेज़ ही नहीं करना है, क़ुर्बतन इलल्लाह परहेज़ करना है, ताकि हमारा रोज़ा जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सके, और हम इन चीज़ों से इस तरह से परहेज़ करें कि हमारी नीयत जो है वो ये हो कि हम अल्लाह के लिए हम परहेज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका भी फ़लसफ़ा है, अल्लाह बात मुबाह चीज़ों से भी हमको, हलाल चीज़ों से भी हमसे परहेज़ कराना चाहता है और ये देखना चाहता है कि हम सही मानों में उसके बंदे हैं कि नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, रोज़े के अहकाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और इस वक्त ये बयान करना है कि कुछ चीज़ें वो हैं कि जिनकी वजह से रोज़े का सवाब कम हो जाता है, जिन्हें मकरूहात रोज़ा कहा जाता है, यानी अगर इन्हें अंजाम दे तो रोज़े का सवाब कम हो। उसमें से एक चीज़ ये कि इंसान कोई ऐसा काम करे कि उसके बदन में ज़ाफ़ पैदा हो, कमज़ोरी पैदा हो, वीकनेस पैदा हो, उससे रोज़े का सवाब कम हो जाता है। जैसे बदन से खून निकालना या दांत निकलवाने को चला जाए, उससे उसके बदन में कमज़ोरी हो जाए, तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इंसान के बदन में ज़ाफ़ महसूस हो, कमज़ोरी उसे महसूस हो। इसी तरह से खुशबूदार घास का सूंघना माह मुबारक में ये मकरूह है। हाँ, खुद इत्र सेंट वगैरह ममनू नहीं है, लेकिन खुशबूदार जो घास होती है उसको अगर सूंघता है तो वो मकरूह, उसका सवाब कम हो जाता है। इसी तरह से अपने जो लिबास पहने हुए है, तर लिबास पहने इंसान, या जो लिबास पहने हुए है उसको उसी को तर करे, तो ये भी कहा गया है कि मकरूह है। या कान में, आँख में, नाक में कोई दवा डालता है इंसान और दवा जो है वो उसके हलक तक पहुंच जाती है, तो उस सूरत में भी उसका जो रोज़े का सवाब है वो कम हो जाता है और मकरूह है। अच्छा, ये भी बयान करते हैं आपकी खिदमत में कि कुछ चीज़ें वो हैं कि जहाँ इंसान को कज़ा करना होती है, कुछ चीज़ें रोज़े, कुछ वो हैं जहाँ कफ़ारा भी है, कुछ चीज़ें वो हैं, कुछ जगह वो हैं जहाँ कज़ा और कफ़ारा दोनों है। कज़ा का मतलब ये कि जो रोज़े हमसे छूटे हैं उसकी जगह हमें दूसरे रोज़ा रखना है, उसकी जगह पे दूसरे रोज़े रखने हैं ताकि जो है वो अदा हो सके। इसी तरह से कफ़ारे का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पे कफ़ारा वाजिब होता है तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, या 60 रोज़े रखे, या इंसान 60 फ़कीरों को खाना खिलाए, या 60 फ़कीरों को एक मुत ताम दे। ये है कफ़ारे का मतलब। तो जहाँ के वह सिर्फ कज़ा है वहाँ इंसान, एक मुरीद वो है कि जहाँ के वह इंसान आमदन जो है वो तय करता है। दूसरा मकाम वो है कि जहाँ इंसान गुस्ल जनाबत भूल जाए, कुछ दिन तक जो है वो इसी हालत में, जनाबत की हालत में इंसान रोज़ा रखता रहे और बाद में वो तवज्जो हो, मुझे गुस्ल वाजिब था और मैंने इतने रोज़े जो है वो इसी हालत में रख लिए, तो वहाँ के ऊपर उसे कज़ा करनी पड़े। या इंसान जो है वो तहकीक किए बग़ैर, किसी ने उससे कहा कि अभी सुबह, अभी अजान नहीं हुई है, अभी सहरी के वक्त ख़त्म नहीं हुआ, उसने तहकीक भी नहीं की और उसने क्या किया, वो खाता पीता रहा, बाद में मालूम हुआ नहीं जो है वो वक्त ख़त्म हो गया था और उसने जो है वो क्या कहते हैं कि वक्त के बाद जो है वो खाया पिया है। ये इसी तरह से मगरिब का वक्त नहीं हुआ और किसी ने उससे कहा, किसी आदिल शख्स ने उससे कहा कि मगरिब का वक्त हो गया, बग़ैर तहकीक किए वो उसने क्या किया, बग़ैर तहकीक किए उसने रोज़ा इफ्तार कर लिया, मालूम हुआ कि बाद में जो है वो रोज़ा का वक्त जो है वो क्या कहते हैं नहीं हुआ था। तो ये वो जगह हैं कि जहाँ के ऊपर इंसान को क्या करना होता है, कज़ा करनी होती है। तो यह मिसाल के तौर पर कोई हायज़ है और नफसा है, इनके जो हैज़ की हालत में, नफास की हालत में बच्चे की विलादत हुई है और उसके बाद रहते उसको उन चंद दिन, जिन दिन औरत जो है वो नफास की हालत में होती है उसे रोज़ा नहीं रखना होता, तो इसके बाद में उसे क्या करनी है, उसे बाद में उसे कज़ा करनी पड़ेगी। तो ये वो जगह हैं जहाँ इंसान को कज़ा करनी है। एक जगह और है जहाँ मतलब बिला वजह इंसान मुंह में पानी डाल रहा है, बिला वजह कुल्ली कर रहा है ठंडक पहुँचाने के लिए, या यूं ही और पानी उसके अंदर चला जाता है, तो यहाँ के ऊपर कहा गया है कि यहाँ के ऊपर भी जो कि रोज़ा टूट गया है पानी के जाने से, उसे रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में रोज़े के अहकाम पेश किए जा रहे थे, मुब्तलात रोज़ा को बयान किया गया उन मुवारिद को बयान किया गया जहाँ के ऊपर इंसान को रोज़े की कज़ा करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम तवज्जो से देखा और सुना और इंशाल्लाह इससे इस्तेफादा किया होगा, और इन मसाइल पर आप तवज्जो देते हैं, मज़ीद तवज्जो देंगे और इस पर इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे, और रोज़े की जो मुफ्तरात हैं उनसे उस तरह से परहेज़ करेंगे जिस तरह से परहेज़ करने के लिए कहा गया है, ताकि हमारा रोज़ा सही मानों में रोज़ा हो सके। आखिर में अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब के आमाल व इबादात को कबूल फरमाए, और जहाँ जहाँ भी इस्लाम के मानने वाले हैं, मोमिनीन हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत और इताअत की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।